हिंदी कविता में मध्यकालीन संवेदना बनाम आधुनिक संवेदना। साधारणतः संवेदना शब्द का प्रयोग सहानुभूति के अर्थ में होने लगा है। मूलतः वेदना या संवेदना का अर्थ ज्ञान या ज्ञानेंद्रियों का अनुभव है। मनोविज्ञान में इसका यही अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसके अनुसार संवेदना उत्तेजना के संबंध में देह रचना के सर्वप्रथम सचेतन प्रतिक्रिया है, जिससे हमें वातावरण की ज्ञानोपलब्धि होती है। संवेदना हमारे मन की चेतना की वह कुटस्थ अवस्था है, जिसमें हमें विश्व के वस्तु विशेष का बोध न होकर उसके गुणों का बोध होता है। सरल शब्दों में कहें तो यह किसी क्रिया या वस्तु की ऐन्द्रिक प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रियाएं स्थितियों के अनुसार अलग अलग होती हैं। मध्ययुगीन संवेदना और आधुनिक संवेदना में अंतर है, क्योंकि इन दोनों के पीछे कार्य कर रही सामाजिक परिस्थितियों में अंतर है। हिंदी साहित्य में मध्ययुग को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल। वस्तुतः इन दोनों की प्रवृत्तियों में बहुत अधिक फर्क है। एक ओर ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानने वाली भक्ति है, तो दूसरी ओर रीतियों और नियमों की व्यवस्थाओं में बंधा श्रृंगार। भक्ति काव्य में संसार की सब समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर। रीति काल और मानवीय समस्याएं प्रायः नहीं है। भक्ति काल के रीति काल में रूपांतरित हो जाने के प्रश्न पर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि भक्ति और श्रृंगार की विभाजक रेखा सूक्ष्म है। भक्ति की अनुभूति की संघनता को व्यक्त करने के लिए बहुत बार राधा कृष्ण के चरित्र और दाम्पत्य जीवन के विविध प्रतीकों का सहारा लिया गया। कबीर जैसे बीहड़ प्रकृति के कवि भाव विभोर होकर कहते हैं, हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। कालांतर में राधा कृष्ण के चरित्र अपने रूप से हट गए। प्रेम और भक्ति के संपृक्त अनुभूति में से भक्ति क्रमशः छेड़ पड़ती गई और प्रेम का सिंगारिक रूप केंद्र में आ गया। भक्ति काल के रीति काल में रूपांतरण की यही प्रक्रिया है। रीति काव्य की विशिष्टता इस बात में है कि उसकी मूल प्रेरणा ऐहिक है। भक्ति काल की ईश्वर की केंद्रित दृष्टि के सामने इसकी दृष्टि मनुष्य केंद्रित है। भक्ति काल में ईश्वर की नरलीला का चित्रण है। रीति काल में कवि मनुष्य का चित्रण भी ईश्वर के नाम से करता है, क्योंकि मनुष्य के विलास का सीधा वर्णन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यहाँ भक्ति काल और रीति काल की प्राथमिकताओं के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। एक के लिए ईश्वर प्रधान है और भक्ति प्रधान है। इस प्रक्रिया में कविता भी बन जाए तो अच्छा है। दूसरे के लिए कविता रचना प्रमुख है। यदि कविता न बन सके तो लाचारी में उसे राधा कृष्ण का स्मरण मान लिया जाए। भिखारी दास कहते हैं, आगे की सुकवि रिझई तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ऐसी स्थिति में रीतिकालीन कवि कर्म भक्ति काल की तुलना में ज्यादा सजग हो जाता है। रीतिकालीन काव्य विशेषता रीतिबद्ध काव्य में दरबारी वातावरण के प्रभाव से भाषा कृत्रिम और अलंकरण प्रधान हो जाती है। छंदों में चमक और चमत्कार पैदा करने की ललक जोर पकड़ती है। परिणाम स्वरूप सामाजिक अंतर्वस्तु क्षीण हो गई है। राम स्वरूप चतुर्वेदी उचित ही कहते हैं कि रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ है, जो उस युग के एकांत प्रशमित से वातावरण के अनुकूल है। लगता है जैसे सारा साहित्यिक परिदृश्य यहाँ अचल हो गया है। रीति काव्य की बनावट में इसलिए ऐतिहासिक सामाजिक द्वंद्व नहीं दिखाई देते। इस तरह नायिका भेद रस छंद अलंकार और श्रृंगार से भरा यह रीतिवादी साहित्य साधारण जनता से निरपेक्ष होकर विकसित होता है। इसके विपरीत भक्ति काव्य जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था से लड़ने वाला, जनता की एकता को स्वीकारने वाला साहित्य था। उसमें उस समय की सामाजिक राजनीतिक हलचलें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होती हैं। इसलिए जब हम मध्ययुगीन और आधुनिक संवेदनाओं के अंतर की बात करते हैं तो हमारे सामने यह समस्या उठ खड़ी होती है कि मध्यकाल की इन दो धाराओं के बीच सामंजस्य कर एक तीसरी नई आधुनिक धारा से उसे कैसे अलग करें। फिर भी हम मोटे तौर पर एक विभाजन करने की कोशिश करेंगे। प्राचीन समय से ही भारत में शरीर को मिथ्या या पानी का बुलबुला माना जाता रहा है। मध्ययुगीन और आधुनिक कवि की संवेदनाओं में इस विषय में अंतर दिखता है। छायावाद के विशेष संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ऐहिक जीवन और शरीर का महत्व, जिसे मध्यकालीन संतों और कवियों ने पानी का बुलबुला और काग गीत का भोजन कहा था, ऐहिकता में आस्था आगे मानवीय आत्मविश्वास का आधार बनती है। इस एक बिंदु पर का समुची मध्यकालीन हिंदी मानसिकता का जैसे कायाकल्प हो गया हो। संन्यास, वैराग्य, तपस्या और परलोकवाद में आस्था जैसे मूल्यों के स्थान पर अब ऐहिक जीवन, इहलोक और मानव शरीर के आकर्षण का महत्व प्रतिपादित होता है। निष्काम कर्म की जगह प्रसाद की कामायनी में कर्म और भोग के सामंजस्य का गुणगान हुआ है। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी भक्ति काल के अंतर्गत संसार का निषेध करके परम तत्व की ओर मन ले जाने का उपकर्म करते हैं। छायावाद के कवि इस संसार को पूरी तरह स्वीकार के उसे परम तत्व से अभिन्न देखते हैं। देह का महत्व वस्तुतः लौकिकता की ओर प्रयाण का नतीजा है, जो आधुनिकता की देन है। सुमित्रानंद पंत अपनी कृतज्ञता शीर्षक कविता में मानव शरीर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं कृतार्थ हूँ देह तीनों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। देह के कोने में आत्मा के पावक धारण करने का बिंब शरीर की क्षमता को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में ऐहिक जीवन में इसी आस्था और श्रद्धा का आख्यान प्रसाद ने किया है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। आधुनिक समय में मनुष्य समस्त चिंतन का केंद्र बन जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी इस संदर्भ में कहते हैं कि मनुष्य की अवधारणा के रूप हिंदी साहित्य के इतिहास में कई बार बदले हैं और इसी के साथ परम तत्व को लेकर उसके रिश्ते भी। आदिकाल के प्रसंग में हमने परिलक्षित किया है कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में वर्णन हुआ है, जबकि भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य रूप में हुआ है। आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत होती है। साहित्य या की ललित कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता। मध्ययुगीन और आधुनिक संवेदनाओं के बीच एक बड़ा अंतर का है। जहाँ मध्ययुग निर्वैयक्तिक प्रतिक्रिया का बाना धारण करता था, वहीं आधुनिक युग वैयक्तिक प्रतिक्रिया को प्रमुखता देता है। छायावाद के विशेष संदर्भों में बात करते हुए नामवर सिंह कहते हैं कि 20वीं सदी की काव्य सीमा में प्रवेश करने पर हिंदी कविता के पाठक का ध्यान सबसे पहले जिस विशेषता की ओर जाता है वह है व्यक्तिक अभिव्यक्ति। व्यक्तिगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में आधुनिक कवि ने जो निर्भीकता और साहस दिखलाया वह पहले किसी कवि में नहीं मिलता। मध्ययुग के संत भक्त और रीतिवादी कवि प्रायः निर्वैयक्तिक ढंग से अपनी बातें कहते थे। संतों और भक्तों के विनय के पदों में जो वैयक्तिक ढंग दिखाई देता है वह केवल भगवान के प्रति निवेदन है। अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में वे प्रायः मौन ही रहते थे और काव्य में अपने प्रणय संबंधों की चर्चा करने की बात तो उस समय सोची भी नहीं जा सकती थी। स्पष्ट है कि मध्ययुग के कवि जहाँ सामाजिक मान मर्यादाओं में बंधे थे, वहीं आधुनिक कवियों ने इन परंपराओं को ढीला करने की प्रक्रिया शुरू की। मध्ययुगीन संवेदना जहां इन परंपराओं को सर झुकाकर स्वीकारती है, वहीं आधुनिक संवेदना उसके विवेचन विश्लेषण में से एक निर्णय पर पहुंचती है और अनुकूलता या प्रतिकूलता के हिसाब से अपनाती या छोड़ देती है। ऊपर कहा जा चुका है कि आधुनिक युग में कवि की व्यक्तिक अनुभूतियां ही अभिव्यक्ति में ऊपर रही। आधुनिक युग की समस्त क्रियाएं प्रतिक्रियाएं मनुष्य को ध्यान में रखकर होने लगी। मनुष्य जीवन का वस्तुगत चित्रण होने लगा। जीवन की समस्याओं का वर्णन प्रारंभ हुआ। समस्याओं के कारणों पर गौर किया जाने लगा। उनका विवेचन विश्लेषण होने लगा। समस्याओं के निवारण के रास्ते सुझाए जाने लगे। शोषण से बचने हेतु भगवान को पुकारने की बजाय कविता शोषक के विरोध में खड़ी हुई। कष्टों से बचने के लिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसहु दुख करहु लाज निजपन की। वहीं आधुनिक कवि मुक्ति बोध कहते हैं, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। प्रगतिशील कविता मजदूरों और किसानों के शोषण की, सबकी बराबरी और परिवर्तन की बात करती है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आकांक्षा केंद्रीय हो गई। समाज के वंचितों और विपन्नों अर्थात स्त्रियों, अछूतों, दलितों के हक में आवाजें उठने लगी। सिर्फ स्त्री के प्रसंग से ही इस अंतर को समझा जा सकता है। रीतियुगीन समय में नायिका भेद के माध्यम से स्त्री के समस्त क्रियाकलापों का चित्रण हुआ और स्त्री के प्रति भक्त कवियों की प्रतिक्रिया विभाजित है। कबीर और तुलसी के स्त्री विरोधी विचार प्राय चर्चा का विषय रहे हैं। इसके समानांतर सूरदास और जायसी की कविता में स्त्री की एक मुक्त छवि प्रस्तुत होती है। मीरा ने एक स्त्री के बुनियादी संघर्ष को स्वर दिया है। सामंतवादी राजसत्ता, परिवार सत्ता और लोक सत्ता के विरुद्ध मीरा का विद्रोह मूलतः स्वतंत्रता की कामना के कारण था। इस विद्रोह में परिणाम स्वरूप में मिला दुख और अकेलापन मीरा की कविता को एक व्यापक मानवीय मार्मिकता देता है। अनेक भक्त कवियों के स्त्री संबंधी विचारों पर विवाद रहा है, परंतु इतना कहना अनुचित न होगा कि उनके विचारों पर सामंती धर्म सत्ता और लोक सत्ता की मान्यताओं की गहरी छाप है। इस संबंध में वे सामान्यतया अनुदार और व्यवस्था समर्थक रहे हैं। उन्होंने स्त्री जाति पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। उसे प्रायः घर की कैद में रखने का समर्थन किया गया है। पतिव्रत धर्म और सुचिता के संबंध में पुरातन विचारों का अनुगमन करते हुए प्रायः सामंती प्रतिसत्ता का समर्थन किया गया है। अनेक भक्त कवियों ने इन व्यवस्थाओं की उपेक्षा की है, परंतु वे समाज में स्त्री की दोयम हैसियत के विरुद्ध प्रायः मौन रहे हैं। भक्ति की संरचना में प्रतिसत्ता के कुछ नियमों को ढीला बनाया गया और स्त्री के दुखों पर सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां भी की गईं, परंतु प्रतिसत्ता के सर्वोच्च चिता पर कोई गंभीर टीप न हो सकी। आधुनिक कवियों ने स्त्री जीवन को निरंतर अपने सरोकार का विषय बनाया, उसे व्यापक सामाजिक गतिविधियों के बीच उसके विचारों और भावों के साथ वास्तविक रूप से चित्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती धर्म सत्ता और पितृसत्ता के दबावों को गहराई से चित्रित किया जाने लगा। उसकी शक्ति और अधिकार चेतना को उभारा गया। समाज में स्त्री और पुरुष के बीच मौजूद स्तर भेद का प्रतिकार किया गया। भारतेंदु युग में ही नारी को समान अधिकार दिलाने के लिए भारतेंदु ने लिखा है, जो हरि सोई राधिका, जोशिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछुना विभक्ति। निराला की कविता तोड़ती पत्थर की मजदूरनी समाज के वर्ग विभाजन को पीड़ा के साथ उकेरती है। प्रगतिशील कवि त्रिलोचन की चंपा मजदूरों का शोषण करने वाली पूंजीवाद के प्रतीक नगर कलकत्ते के ढहने की कल्पना करती है। कलकत्ते पर बजर गिरे समकालीन कवि के यहाँ स्त्री सपनों से भरी है। स्त्री की स्वप्नशीलता बंद समाज से बाहर निकलने की छटपटाहट को व्यक्त करती है। जकड़न से भरे समाज में मुक्ति के स्वप्न अनेक विडंबनाओं को जन्म देते हैं। लड़की हरे भरे पेड़ देखती है तो उसे आकाश दिख जाता है। ऊंचे ऊंचे मिले जुले मकान देखती है तो आकाश दिख जाता है। लड़की चाहे पेड़ न देखे, पेड़ पर बैठी चिड़िया देखे, उसे आकाश दिख जाता है। घर की खिड़की घंटों बंद रखे, बस थोड़ी सी खोले या भूल से सड़क पर निकल आए, दाएं जाए तो बाएं, उसे आकाश दिख जाता है। रघुवीर सहाय स्त्री की संपूर्ण त्रासदी को व्यंगात्मक लहजे से कुछ यूं रखते हैं, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब को लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। चंद्रकांत देव ताले अपनी कविता औरत में उसके प्राय श्रमिक जैसे जीवन को बिंबों के माध्यम से उभारते हैं। वह औरत आकाश और पृथ्वी के बीच कब से कपड़े पछीट रही है, पछीट रही शताब्दियों से धूप के तार पर सुखा रही है। वह औरत आकाश और धूप और हवा से वंचित धूप गुफा में कितना आटा गुथ रही है, मनोशेर आटा, असंख्य रोटियां सूरज की पीठ पर पका रही है। स्त्री के अनुत्पादक माने जाने वाले श्रम और मूल्यहीन माने जाने वाले जैविक दायित्व और पारिवारिक जवाबदेहियों के बाद भी आज वह अपनी पहचान के लिए बेचैन है। स्त्री जीवन की संपूर्ण त्रासदी यहाँ एक रूपक में प्रकट होती है। गत दो दशकों में उभरी कवित्रियों ने स्त्री जीवन की ज्यादा वस्तुगत धरातल पर व्यक्त किया है। विज्ञान और तकनीक के विकास से आधुनिक युग में दुनिया एक बड़े गांव में बदल गई है। सारी चीजें हमारे दृश्य फलक पर आ गई है, जबकि मध्ययुग में ऐसा नहीं था। आधुनिक कवि की संवेदना के दायरे में सारी दुनिया आ गई। संवेदना के विस्तार से भारत से बाहर हो रही सैकड़ों घटनाओं पर कवि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। विश्व में हो रहे परिवर्तनों पर लिखी गई हिंदी कविताएं इसका साक्ष्य हैं। आधुनिक समय में राष्ट्रीयता का विकास होता है, समस्त देश की राजनीतिक एकता निर्मित होती है। इसी समय दुनिया में उठी स्वाधीनता की लहर से भारत भी प्रभावित होता है और यहाँ स्वाधीनता के लिए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत होती है। साथ ही साहित्य में भी स्वाधीनता की मांग जोर पकड़ती है। रीतियुगीन कवि जब भारत में अंग्रेज अपना राज्य कायम कर रहे थे, नायक नायिका भेद और रस अलंकार में मग्न थे। इसके विपरीत आधुनिक कवि एक ओर अंग्रेजी साम्राज्यवाद तो दूसरी ओर भारतीय सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। आधुनिक काल के प्रारंभ में भारतेंदु युग में भारतेंदु भारतीय समाज की दुर्दशा की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर डालते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन बीते सी चली जात इही अति ख्वारी। ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारो, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। सबके ऊपर टिकसक की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। इसी भारतेंदु युग में रीतिकालीन प्रवृत्ति रखने वाले लेखक इन मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। द्विवेदी युग में यह राष्ट्रीय चेतना विकसित होती है। क्रूर कुशासन की सजधारी, कट्टर कूट कुनीति प्रसारी, हाँ ना लोकमत से डरती है, भारत का भुरता करती है। इसी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी प्रसिद्ध कृति भारत भारती में भारतीय जनता का आह्वान करते हैं। है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग 30 करोड़ हो, यदि एक हो तो फिर तुम्हारा कौन जग में जोड़ हो। उत्साह जल से सींच कर हित का अखाड़ा मोड़ दो, गर्दन अमित्र अधा पतन की ताल ठोक मरोड़ दो। छायावाद और प्रगतिवाद में राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता की भावना का विकास दिखाई देता है। स्वतंत्रता आंदोलन में इन कविताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि यदि रीतिवादी संवेदना और दिनों तक हमारे समाज में जीवित रहती तो हमें आजादी के लिए और इंतजार करना पड़ता। इसी रीतिवादी संवेदना के खिलाफ हमें बहुत वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा है। हिंदी नवजागरण का यह मूल संघर्ष रहा है। भक्ति आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण नवजागरण था। दोनों का अंतर बताते हुए मैनेजर पांडे कहते हैं कि भक्ति आंदोलन और 19वीं सदी से प्रारंभ होने वाले नवजागरण का मुख्य अंतर यह है कि पहला जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंतवाद विरोधी और मानवतावादी है। दूसरा राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी है। आधुनिक कविता की एक बड़ी विशेषता उसकी राजनीतिक सचेतना है। आधुनिक समय में दुनिया के लगातार छोटे होते जाने से सारी चीजें कवि या लेखक की निगाह से गुजरती हैं। वह चीजों के अंदर धंसकर आम जनता के शोषण को पहचानता है और उसका चित्रण करता है, उसके विरोध में खड़ा होता है। वह राजसत्ता की गलतियों को उजागर करता है, उनसे सवाल जवाब करता है और कभी कभी उसे बदल देने का आह्वान भी। मध्ययुग में ऐसी राजनीतिक सचेतना नहीं पाई जाती है। भक्ति काल और रीति काल में उसके कुछ चिन्ह अवश्य दिखाई देते हैं। आधुनिक संवेदना के प्रथम चरण भारतेंदु युग में भी राजनीतिक और सामाजिक सत्ताओं पर सीधे व्यंग किया जाता है। अपने अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाटक अंधेर नगरी में भारतेंदु ने भारतीय सामंतों और अंग्रेजों के साम्राज्य चलाने के ढंग पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतेंदु का चूरन वाला कहता है, चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया। चूरन साहब जो लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, चूरन सभी महाजन खाते से जमा हजम कर जाते। इस युग के साहित्य ने साम्राज्यवादी भारत विरोधी नीतियों का विरोध किया, वहीं वह भी तब जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसा कोई अधिकार उसके पास न था। आगे इस राजनैतिक चेतना का विकास हुआ। मुक्तिबोध अपनी कविता भूल गलती में प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को भी भूल और गलती की संज्ञा देते हैं। भूल गलती आज बैठी है जियर बख्तार पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंख चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी खड़ी है सिर झुकाए, सब कतारे बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खम्बो व मेहराबो थमे दरबारे आम में। बहुत से कवियों ने राजनीतिक घटनाओं पर सीधे कविताएं लिखी हैं। इनमें नागार्जुन का नाम उल्लेखनीय है। अपनी प्रसिद्ध कविता शासन की बंदूक में वे कहते हैं, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूप, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चुक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूट पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। इस तरह हम पाते हैं कि मध्ययुगीन साहित्य जहां निर्वैतिक था, वहीं आधुनिक साहित्य में व्यक्तिकता की प्रवृत्ति बढ़ी है। मध्ययुग में जहां ईश्वर और राज समाज संवेदना के केंद्र में सर्वोपरि था, आधुनिक युग की समस्त संवेदना मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती है। मध्ययुगीन कवि समस्याओं के निवारण के लिए भगवान में विश्वास रखता है, वहीं आधुनिक कवि मनुष्य को इनसे लड़कर निजात पाने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति साहित्य में मनुष्य मात्र की एकता जहां कुछ शर्तों पर आधारित था, वहीं आधुनिक संवेदना के अनुसार सभी मनुष्य स्त्री पुरुष ऊंचे नीचे बराबर हैं। मध्ययुग में जिस देह के कवि बंधन समझता है, आधुनिक कवि से उपहार समझता है। दुनिया के लगातार छोटे होने की वजह से आधुनिक कवि की संवेदना का क्षेत्र मध्ययुगीन कवि की तुलना में विस्तृत हुआ। आधुनिक कवि में राष्ट्रीयता व स्वाधीनता की चेतना तीव्र है। राजनीतिक चेतना उसकी संवेदना में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजनीतिक सरोकारों पर नए युग में सीधी कविताएं लिखी जाती हैं। आधुनिक संवेदना शोषण के खिलाफ खड़ी होती है, उनसे लड़ती है। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक संवेदना के विस्तृत फलक में मध्ययुग की प्रगतिशील परंपराओं ने स्थान पाया है, वहीं उसकी पतनशील वृत्तियों को उसके बहुत हद तक छोड़ा है। भक्तिकालीन साहित्य में अपने समय और समाज की जो उपस्थिति दिखाई देती है वह आधुनिक समय में अत्यंत व्यापक होती गई है।